12वां अध्याय, सियाम या थाईलैंड। पहला, सियाम में भारतीय उपनिवेशों का सूत्रपात। बर्मा के पूर्व और कंबोडिया के पश्चिम में सियाम था। थाईलैंड राज्य की स्थिति है। दक्षिण पूर्वी एशिया का यह देश भी उस भूखंड के अंतर्गत था। प्राचीन भारतीय जिसे स्थूल रूप से स्वर्ण भूमि कहा करते थे। बर्मा के समान सियाम में भी वर्तमान समय में बौद्ध धर्म का प्रचार है और वहां की भाषा, कला, संस्कृति आदि पर भारत की छाप स्पष्ट रूप से विद्यमान है। 2 लाख वर्ग मील के लगभग क्षेत्र में इस देश की जनसंख्या 3.25 करोड़ से कुछ अधिक है और वहां के निवासियों में थाई लोगों की प्रधानता है। थाई जाति के कारण ही अब इस देश को थाईलैंड कहा जाता है, पर वहां थाई जाति का प्रवेश 12वीं सदी में प्रारंभ हुआ था और 13वीं सदी में ही यह जाति वहां अपना राजनैतिक प्रभुत्व स्थापित करने में समर्थ हुई थी। इस काल में पूर्व वहां बहुत से भारतीय उपनिवेश विद्यमान थे, जिनके निवासी पौराणिक हिंदू धर्म तथा बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। ईस्वी सन की पहली 2 सदियों तक वहां भारतीय सभ्यता और संस्कृति अवश्य ही स्थापित हो चुकी थी। यह भी संभव है कि इससे पहले भी वहां भारतीय उपनिवेश कायम होने शुरू हो गए हों। प्रथम नामक स्थान की खुदाई में अनेक भारतीय मूर्तियां मिली हैं जो 2री सदी ईस्वी या उससे भी कुछ पहले की हैं। प्रथम से 20 मील दूर पश्चिम में पोंग तुक नामक स्थान पर एक पुराने मंदिर के भग्नावशेष विद्यमान है, जिनसे बुद्ध की एक मूर्ति भी उपलब्ध हुई है। इन अवशेषों को भी इसी सदी का ही माना जाता है। सियाम के अन्य भी बहुत से स्थानों पर बौद्ध तथा पौराणिक देवी देवताओं की प्राचीन मूर्तियां पाई गई हैं। मूर्ति कला की दृष्टि से जो गुप्त युग की शैली में निर्मित है। मुंग सी टेप नामक स्थान पर अनेक शैव तथा वैष्णव मूर्तियां मिली हैं और उनके साथ संस्कृत का एक शिलालेख भी उपलब्ध हुआ है। इन सब तथ्यों को दृष्टि में रखने पर इसमें कोई संदेह नहीं रह जाता कि ईस्वी सन के प्रारंभ काल में ही सियाम में भारतीयों के उपनिवेशों का सूत्रपात हो गया था। पर सियाम का कोई भी प्राचीन भारतीय उपनिवेश शक्तिशाली राज्य का रूप प्राप्त नहीं कर सका। इसका कारण यह था कि इसी प्राचीन काल में कंबोडिया के प्रदेश में एक शक्तिशाली भारतीय राज्य की सत्ता थी, जिसे चीनी लोग हुनान नाम से पुकारते थे। हुनान के राजा सियाम के भारतीय उपनिवेशों को भी अपनी वशवर्ती बनाने में समर्थ हुए थे और इसीलिए उन्होंने अपना उत्कर्ष करने का अवसर नहीं मिल पाया था। पर 7वीं सदी में जब हुनान की शक्ति का ह्रास होने लगा तो सियाम के राज्यों को स्वतंत्र होने और उन्नति करने का अवसर प्राप्त हो गया और उन्होंने उसका भली भांति उपयोग किया। सियाम के इन भारतीय राज्यों में द्वारवती मुख्य था। इस राज्य के विषय में पिछले 1 अध्याय में भी लिखा जा चुका है। बर्मा के मूल निवासियों की एक जाति मो थी, जिसका निवास दक्षिणी बर्मा में था। भारतीय उपनिवेशकों के संपर्क में आकर मो लोगों ने भारतीय धर्म तथा संस्कृति आदि को पुनरूप में अपना लिया था और वे पूरी तरह से भारतीय रंग में रंग गए थे। बाद में मो लोगों ने उत्तर की ओर भी अपना प्रसार किया और बर्मा से लगते हुए सियाम के पश्चिमी प्रदेश में द्वारवती नामक अपना राज्य स्थापित किया। इसकी राजधानी लोपबुरी थी। हुनान की शक्ति क्षीण होने पर 7वीं सदी में द्वारवती अच्छा शक्तिशाली राज्य बन गया था और 638 ईस्वी में उसके राजा की ओर से चीन के सम्राट की सेवा में दूत मंडल भी भेजे गए थे। उत्तरी सियाम में एक अन्य भारतीय राज्य था जिसे हरिपंचय कहते थे। सियाम के पुराने ग्रंथों के अनुसार इसकी स्थापना ऋषि वासुदेव द्वारा 661 ईस्वी में की गई थी। 2 वर्ष बाद लवपुरी द्वारवती की राजकुमारी श्याम देवी वासुदेव के निमंत्रण पर हरिपंचजय गई और वहां से उसे राज सिंहासन पर अभिषिक्त किया गया। श्याम देवी के वंशज देर तक हरिपंचजय में शासन करते रहे और उन द्वारा उस देश में बौद्ध धर्म का भली भांति प्रचार किया गया। सियाम के इन भारतीय राज्यों का वृतांत वहां के पुराने ग्रंथों में संकलित है और उससे वहां के राजाओं के नामों को जाना जा सकता है। ये सब नाम भारतीय हैं। सियाम के जो भारतीय राज्य फुनान की अधीनता से मुक्त होने में समर्थ हुए थे, वे देर तक अपनी स्वतंत्र सत्ता कायम नहीं रख सके। 10वीं सदी में जब कंबोडिया के राजाओं ने अपनी शक्ति का विस्तार प्रारंभ किया तो उन्होंने सियाम पर भी आक्रमण किए और धीरे धीरे संपूर्ण सियाम पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया। कंबुज का यह प्रभुत्व 13वीं सदी तक कायम रहा। इस काल में थाई लोगों ने सियाम में प्रवेश आरंभ कर दिया था और वहां उन्होंने अपने अनेक स्वतंत्र राज्य स्थापित कर लिए थे। थाई लोगों का मूल निवास चीन के दक्षिणी व दक्षिण पूर्वी प्रदेशों में था और वहीं से वे सियाम में आए थे। सियाम में विद्यमान भारतीय संस्कृति के संपर्क में आकर थाई लोगों ने भी भारत के धर्म, संस्कृति आदि को अपना लिया था। थाई लोगों द्वारा जो अनेक राज्य सियाम में कायम किए गए, हम उन पर अगले प्रकरण में प्रकाश डालेंगे। पर 12वीं सदी तक के सियाम पर भारत का प्रभाव किस रूप में था, इस विषय में कुछ बातें उल्लेखनीय हैं। सियाम में विशेषतया द्वारवती के क्षेत्र में जो प्राचीन मूर्तियां मिली हैं, वे भारत के गुप्त युग की मूर्तियों से बहुत अधिक सादृश्य रखती हैं। इन मूर्तियों की मुखाकृतियां भी भारतीयों के मुखों के सदृश हैं। बाद के समय की जो मूर्तियां वहां प्राप्त हुई हैं, उनकी मुखाकृतियों पर मंगोल प्रभाव भी दृष्टिगोचर होता है, जो सर्वथा स्वाभाविक है। पर कई सदियों तक द्वारवती आदि में ऐसी मूर्तियां बनती रहीं जिनमें और गुप्त युग की भारतीय मूर्तियों में कोई भी भेद नहीं है। मुखाकृति के अतिरिक्त इन मूर्तियों की जो वेशभूषा प्रदर्शित की गई है वह भी विशुद्ध भारतीय है। सियाम में बौद्ध धर्म से संबंध रखने वाले कुछ ऐसी मूर्तियां भी मिली हैं जिनमें धर्म चक्र और मृग भी अंकित है और मानव शरीर के रूप में बुद्ध को प्रस्तुत नहीं किया गया है। 20वीं सदी के प्रारंभ से पहले भारत में भी एक ऐसा समय रह चुका है जबकि मानव आकृति में बुद्ध की मूर्तियां नहीं बनाई जाती थी और धर्म चक्र सदृश लक्षणों चिन्हों से बुद्ध का ध्यान किया जाया करता था। सियाम में भी ऐसी प्रतिमाओं की उपलब्धि यह सूचित करती है कि उस देश में बौद्ध धर्म का प्रवेश 20वीं सदी से पहले ही हो गया था। यही बात भी महत्व की है कि सियाम में बौद्ध और पौराणिक धर्मों की प्राचीन मूर्तियां ऐसे स्थानों से भी प्राप्त हुई है जो समुद्र तट से बहुत दूर है। बहुत प्राचीन समय में ही भारतीयों ने वहां बसना शुरू कर दिया था, यह इससे स्पष्ट हो जाता है। पोंग तुक से प्राप्त हुई बुद्ध की कांस्य मूर्ति का निर्माण अमरावती की मूर्ति कला की शैली में हुआ है। मूर्ति कला की अमरावती शैली भारत में 2री सदी तक विकसित हो गई थी और बाद में उसका स्थान गुप्त शैली ने ले लिया था। अतः पोंग तुक की कांस्य मूर्ति को 2री सदी का समझा जा सकता है। सियाम में मिली कतिपय मूर्तियां ऐसी भी हैं जिन पर अभिलेख भी उत्कीर्ण हैं। इन अभिलेखों के आधार पर इन्हें 5वीं और 6ठी सदियों का माना गया है। सियाम के अति प्राचीन काल के कोई मंदिर इस समय सुरक्षित दशा में विद्यमान नहीं है, यद्यपि अनेक स्थानों पर उनके भग्नावशेष पाए जाते हैं। सवंगलोक नामक स्थान पर एक पुराने मंदिर की पाषाण वर्तनी के कुछ खंड मिले हैं जो सांची के स्तूप की पाषाण वर्तनी से मिलते जुलते हैं। थाई लोगों के सियाम में प्रवेश से पूर्व वहां भारतीय संस्कृति की जिस रूप में सत्ता थी उसका कुछ आभास इन तथ्यों से प्राप्त हो जाता है।